डॉक्टर साहब, सर्दियों में फजाई जो आलूदगी रहती है, हवा की आलूदगी रहती है, एक सवाल, सर्दियों में ये मसला इतना पहले पेश क्यों आता है, मैं ये पूछना चाहूंगी।
वैसे आलूदगी जो है, ये तो जितने भी बड़े शहर होते हैं, जितने भी गुंजान आबाद इलाके होते हैं, उसमें तो आलूदगी होती ही, गर्मी में होती है, सर्दियों में भी होती है। लेकिन सर्दियों में आलूदगी क्यों बढ़ जाती है, इसकी एक ख़ास वजह है।
जी
क्योंकि जो सर्दी में जो ज़मीन का जो टेम्परेचर होता है, वो अचानक वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है, और ख़ासकर जो ज़मीन के साथ जो लेयर होते हैं, जो एक सर्द लेयर बन जाता है, और उसके ऊपर एक और लेयर होता है जो गर्म लेयर होता है, और ये जो लेयर बन जाता है, इसकी वजह से जो मुख्तलिफ किस्म के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो इसको आगे नहीं भेजते, तो वो ट्रैप हो जाते हैं, जो ज़मीन के ऊपर का जो सतह है उसके ऊपर ये ट्रैप हो जाते हैं, वो जो सर लेयर होता है उसको ये रोकते हैं ऊपर जाने से। इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, और ये एक लेड बन जाता है, एक कोर बन जाता है हमारे ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर। तो ये ख़ासकर जो सर्दियों के हवाले से ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जो गर्मी के दिन होते हैं उसमें तो अक्सर जितना भी टम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, ऊपर या जो ज़मीन के नज़दीक जो लेयर होते हैं उसमें तकरीबन इतना डिफरेंस नहीं होता टेम्परेचर का। लेकिन सर्दियों में ये डिफरेंस बढ़ जाता है, नीचे जो लेयर होते हैं वो फौरन सर्द हो जाते हैं, और एक ऊपर लेयर बन जाता है, और इसकी वजह से जो अक्सर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, और इसका जो डायरेक्ट असर होता है वो जितने भी लोग होते हैं, जितने भी नीचे जो चीज़ें होते हैं उस पर इसका असर होता है।
सही। तो डॉक्टर साहब, इसका असर यानी फ़ज़ाई और आलूदगी का असर हमारी सेहत पर किस तरह से पड़ना शुरू होता है?
ख़ासकर सर्दियों में, क्योंकि जो आलूदगी होती है उसका जो शिद्दत होता है वो बढ़ जाता है, और जो हमारे साथ जो हवा होती है उसके जो कंपोजिशन होती है, एयर कंपोजिशन होती है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के जो गैसेस होते हैं, मुख्तलिफ गैसेस का ये एक अमेज़ा होता है, एक मिक्सचर होता है, एक ख़ास रेशो में, एक ख़ास परसेंटेज में ये गैसेस इसके अंदर मौजूद होती है। लेकिन जब आलूदगी बढ़ जाती है, और ख़ासकर जो एयर पोल्यूशन के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक है हमारा एयर पोल्यूशन के हवाले से है, में जितनी भी ये जो पोल्यूटेंट्स है, ख़ासकर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या दूसरे भी जो मुख्तलिफ किस्म के सल्फर डाइऑक्साइड, यो जो नाइट्रेट्स है, ये जो चीज़ें हैं इसकी एक्युमुलेशन हो जाती है, जो एक ऊपर लेयर है हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर है उसमें ये जमा हो जाते हैं, और ये जो पोल्यूटेंट्स है इसको हम ख़ासकर पार्टिकुलेट मैटर्स भी कहते हैं, और ये पार्टिकुलेट मैटर्स हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो साइज़ होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, जो ज़र्रात होते हैं हमारे ऊपर एक एटमॉस्फेयर में, उसका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा, वो माइन्यूट किस्म का, जो माइक्रोस्कोपिक किस्म का साइज़ होता है, और इसमें दो किस्म के हमारे साथ जो पार्टिकुलेट मैटर्स आते हैं, इसको हम कहते हैं, एक को PM10 कहते हैं इसको, और एक दूसरा जो किस्म है हमारे साथ PM2.5, ये इसको हम PM जो बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर, और 2.5 जो हम इसको कहते हैं, ये इसका जो डायमीटर होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उसका जो डायमीटर होता है 2.5 माइक्रोमीटर, ये इतना छोटा होता है। तो आप अंदाज़ा कर ले कि इतने छोटे साइज़ का जो पार्टिकल अगर हवा में सस्पेंडेड हो, तो ये आसानी के साथ जो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसमें ये चला जाता है, ख़ासकर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है इसमें ये चला जाता है, और ये मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकुलेट मैटर्स है, जो मुख्तलिफ किस्म के गैसेस है, जो मुख्तलिफ किस्म के ज़र्रात है, तो ये अगर ये अंदर चले जाते हैं तो हर एक का अपना एक अलग नुकसान है, और ख़ासकर जो सर्दियों में ये जो आस्थमा के पेशेंट होते हैं, या जो एनीमिक पेशेंट्स होते हैं, या जो दूसरे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसको कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ या जो दिल की मुख्तलिफ किस्म के वारिस होते हैं, वो ख़ासकर मुतासिर होते हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, या जो टॉक्सिकेंट्स हम इसको भी कह सकते हैं, इसका जो असर है ये उन लोगों पर ज़्यादा होता है जो ऑलरेडी वो सफर्ड है, ऑलरेडी वो बीमार है। तो अगर वो मिसाल के तौर पर आस्थमा का शिकार है, एक मरीज़ है आस्थमा का शिकार है, तो सर्दियों में इसकी जो शिद्दत होती है या इसकी जो इंटेंसिटी हो तो और बढ़ जाती है, क्योंकि जो मुख्तलिफ किस्म के इरिटेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये आस्थमा बढ़ जाता है, ये सर्दियों में जो मैंने ज़िक्र किया इसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, और ख़ासकर जो हम सांस लेते हैं जब हम बाहर जाते हैं तो हर वक्त एक किस्म की आलूदा हवा होती है और उसको हम इनहेल करते हैं, तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं फिर।
बिल्कुल, वो भी
वाजिद अली
शामिल करें।
शिराजी साहब, एक तो उन्होंने वही स्मॉग के बारे में पूछा था कैसे बचा जाए, और दूसरा सवाल उन्होंने किया है कि मास्क के इस्तेमाल के बावजूद उसके मुजर असरात से बचना मुश्किल है, डॉक्टर साहब से मशवरा चाहिए। इस हवाले से कई और सवाल भी आए हैं।
जी डॉक्टर साहब,
मास्क के हवाले से उसने पूछा है, तो ये जितने भी पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं इनका जो पार्टिकल साइज़ होता है, जिस तरह मैंने शुरू में ज़िक्र किया, ये बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, तो ज़ाहिरी बात है ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जा सकते हैं, हमारे इनहेलेशन के थ्रू हमारे लंग्स में जा सकते हैं, तो मास्क के भी जितने वो पोर्स होते हैं वो तो भी उस लिहाज से काफ़ी वो बड़े होते हैं, तो
बिल्कुल
डेफिनेटली वो तो अंदर ही जाएंगे। और दूसरी बात उसने कहा कि किस तरह वो बचाया जाए खुद को, तो एहतियाती तदाबीर के हवाले से अगर हम बात कर ले तो बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर हो सकते हैं जिस पे अमल करके हम काफ़ी हद तक खुद को महफूज रख सकते
डॉक्टर साहब,
हैं।
अगर हम चाहें तो ये एहतियाती तदाबीर जो है इनको आखिरी हिस्से में हम शामिल करें ताकि अपनी
सही
गुफ्तगू को हम आगे बढ़ा सकें। यहाँ
ठीक
पर पूछना मैं यहाँ पर ये चाहूँगी वजूहात के हवाले से, और देखें कि इसकी वजूहात क्या है और कितना खुद हमारा इसमें किरदार है, इसके बजाय कि हम ये कहें हाँ ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है, गर्म हवा ऊपर चले जाती है, कुदरती अमल है। जी
एक तो ये है कि मौसम के हवाले से कि ये जो सर्दियों में ये बढ़ जाता है, लेकिन जितने भी बड़े शहर हैं दुनिया में, जिस तरह अभी इसने ज़िक्र किया तेहरान है या इवन लंदन, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे सिटीज़ है, शहर है जो मुतासिर है, ख़ासकर दुनिया में बीजिंग और दिल्ली के अंदर ये जो मसाइल है आलूदगी की ये बहुत शिद्दत के साथ पेश आ रहे हैं।
बिल्कुल
तो वजूहात की अगर हम बात कर ले तो ये तो सिर्फ सर्दी से इसका ताल्लुक़ नहीं
नहीं
है,
है,
क्योंकि
बिल्कुल
गर्मियों में भी ये आलूदगी मौजूद है। तो सबसे जो बड़ी वजह है इसकी जो पोल्यूशन की वो तो ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि आजकल देखिए हर एक के पास अपनी गाड़ी है और जितनी भी रोड्स है वो सारे भर गए हैं गाड़ियों से,
बिल्कुल
जो दूसरी मुख्तलिफ किस्म की ये जो बाइक्स है जितनी भी इनकी ये जो कम्बशन होती है, इसके अंदर फ्यूल कम्बशन होती है डीजल और पेट्रोल की, तो इसकी जो बर्निंग होती है, इसकी कम्बशन होती है, तो जो गैसेस निकलते हैं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर यही है,
सही
एक बड़ा फैक्टर यही एक काजेटिव फैक्टर है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो इसका इखराज होता है वो चला जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। और जो दूसरी वजूहात है उसमें जो मुख्तलिफ किस्म के कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज़ है, वो भी अक्सर जो शहर के आसपास होते हैं, तो इनकी जो आलूदगी होती है वो जो स्मोक निकलता है, जो धुआँ निकलता है, वो भी माहौल को आलूदा कर रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के, ख़ासकर सर्दियों के हवाले से, क्योंकि आज हमारा टॉपिक सर्दियों के हवाले से है, लोगों को सर्दी लगती है तो जो कोल बर्निंग होते हैं, जो कोयला होता है, अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर ये जो आप इस पे अगर आप स्टडी कर ले तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि बीजिंग के अंदर ये जो आलूदगी बढ़ जाती है सर्दियों में, इसका जो सबसे बड़ा वजह है ये ऑटोमोबाइल से हटकर ये कोल बर्निंग है, क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं उनके घरों में ये कोयला जलाते हैं खुद को गर्म करने के लिए,
सही
तो ये जो कोयला है इसकी वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये एक बहुत बड़ा वजह है, इसके वजूहात में शामिल है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, जिस तरह स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री में जितनी भी ये मैन्युफैक्चरिंग होती है या जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उसके जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के पॉइजनस गैसेस निकलते हैं, वो माहौल में, हवा में अंदर चले जाते हैं और ये माहौल को आलूदा कर देते हैं। तो ये सारी मुख्तलिफ किस्म की वजूहात है जिसकी वजह से भी ये आलूदगी बढ़ जाती है, और सर्दियों में इसका जो शिद्दत है ये और भी बढ़ जाता है।
सही। अच्छा, आपने अपनी पिछले हिस्से की गुफ्तगू में इशारा किया कि ऐसे अफराद जिनको दिल की अब मुख्तलिफ बीमारियां हैं या फिर अस्थमा या फिर जो है इससे जो नज़दीक हैं, सिर्फ क्या वही लोग जो हैं वो खतरे के दायरे में आते हैं या नहीं, फिर और भी कैटेगरीज इसमें शामिल हैं, मिसाल के तौर पर बच्चे या बूढ़े अफराद वो भी शामिल हो सकते हैं इसमें?
जो हाईली रिस्क पे होते हैं वो तो जाहिर बात है ये जो इन्फेंट्स है, न्यू बॉर्न है और एल्डरली पेशेंट्स, ये तो ज़्यादा मुतासर होंगे,
सही
लेकिन ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स है ये तो कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ये बीमारियां कास कर जाते हैं हमारे जिस्म के अंदर, तो जो हेल्दी इंडिविजुअल है, सेहतमंद लोग हैं, आम लोग हैं जिसको कोई बीमारी नहीं है, आस्थमा नहीं है या जो मुख्तलिफ दिल की दूसरी बीमारियां वो नहीं है, तो वो भी अगर ये चीज़ें वो इनहेल करते हैं सांस के ज़रिए, वो अंदर चले जाते हैं, तो اثر ہے ان پہ بھی ہے یہ.
ہے.
تو صرف یہ تعلق اس طرح نہیں ہے کہ یہ بچے صرف متاثر ہوں گے یا بڑے زیادہ متاثر ہوں گے, لیکن اگر ہم انٹینسٹی کی بات کر لیں تو پھر بچے یا جو انفینٹس ہوتے ہیں اور جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا
بالکل
جو آلریڈی بیماری کا شکار ہے وہ زیادہ متاثر ہوں گے.
ان کو خطرہ زیادہ لاحق
ہاں
ہے.
خطرہ زیادہ لاحق ہوگا,
ٹھیک ہے
لیکن جو دوسری لوگ ہیں عام لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے.
بالکل.
ایک سوال آیا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ اس موقع کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ مختلف جو مسائل اس میں جو پیش آ رہے ہیں, مختلف بیماریاں ہوتی ہیں, تو کہاں سے پتہ چلا جائے گا؟ یہی نزلے زکام کے حوالے سے بھی ابھی پوچھا تھا میرے خیال میں گم کر دیا سوال, کہ اس میں ہاں سوائن فلو کے بارے میں پوچھا ہے, اور اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا ہے کہ جو نزلہ زکام یا کھانسی ہوتی ہے یہ سب فضائی آلودگی کی وجہ سے ہے یا نہیں. زرینہ احمد خان اسکردو بلتستان سے پوچھ رہے ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب,
صرف اگر ہم یہ کہیں کہ یہ فضائی آلودگی کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہ بھی میرے خیال میں مناسب نہیں ہے, کیونکہ نزلہ زکام کے اور بھی بہت زیادہ وجوہات ہو سکتے ہیں, انفیکشن ہو سکتے ہیں, لیکن یہ جو فضائی آلودگی ہے اس میں چونکہ ویسے بھی یہ مختلف قسم کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں, تو ظاہری بات ہے ان دنوں میں یا جو آلودگی بڑھ جاتی ہے تو لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں, تو یہ جو مختلف قسم کے ایریٹنٹس ہوتے ہیں یا الرجنز ہوتے ہیں, جو لوگ الرجک ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے لیے, تو وہ بہت زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز جو میں آپ سے یہاں پر پوچھنا چاہوں گی, ایسی بیماریاں جو سموگ یا پھر وہی ہم اگر عام الفاظ میں کہیں فضا کی آلودگی کی وجہ سے انسان کو ہونے کا خطرہ ہے, ان کا نام بتائیے ہمیں.
مختلف قسم کی بیماریاں ہیں جو یہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ جنم لیتے ہیں, خاص کر جو ہمارے سانس کی بیماریاں ہیں جس طرح آستما ہے, یہ بھی اس کی وجوہات میں شامل ہے کیونکہ یہ ہو جاتا ہے اور بڑھ بھی جاتا ہے. اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو بلڈ سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں خاص کر انیمیا ہے, کیونکہ یہ جو ہم آلودہ جو ہوتے ہیں ہوا سانس کے ذریعے اگر ہم اس کو اندر لے کے جاتے ہیں تو یہ جو اس کی پروپورشن ہے مختلف قسم کے جو گیسز ہوتے ہیں جو نارمل ایئر میں موجود ہوتے ہیں وہ آلودہ جو ہوا ہوتا ہے اس میں وہ نہیں ہوتا, اور خاص کر آکسیجن جو زندگی کے لیے بہت لازمی ہے, تو جو آلودہ ہوا ہوتا ہے جو پولوٹیڈ ایئر ہوتا ہے اس میں یہ کم ہوتا ہے جو اس کا ریشو ہے, تو یہ اندر چلا جاتا ہے جسم کے اندر, تو یہ جو مختلف قسم کے سیلز ہوتے ہیں یا جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو آکسیجن اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور یہ مختلف جو ہمارے باڈی کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے, تو یہ جس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, تو جو بلڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں یہ بھی اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف قسم کے ایسی بھی جو ٹاکزیکنز ہے جو ہوا میں موجود ہوتے ہیں جس طرح لیڈ ہے یا دوسرے اور زیادہ مختلف قسم کی چیزیں, اس کی وجہ سے کینسر بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کارسینوجینک ہے, کینسر کازنگ ایجنٹس ہے, تو اسکن ریلیٹڈ کینسر بھی ہو سکتا ہے, دوسرے جو سسٹیمک سرکولیشن میں یا جو ہمارے جسم کے اندر یہ جاتے ہیں تو کینسر کے چانسز بھی
پڑ
ہو سکتے
سکتے
ہیں.
بالکل. اور اس کے علاوہ آنکھوں میں جلن یا آئی انفیکشن, کیونکہ مجھے خود جو ہے اس کا مسئلہ رہتا ہے اس موسم میں, تو یہ ایک ذاتی تجربہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. زرینہ احمد اسکردو بلتستان صاحب نے بتایا, حسن بھائی میرے ذہن میں ایک بات آئی, آج میں نے اسکردو کے جو ہیں وہ بادام کھائے تھے, ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں بتایا کہ اسکردو کے بادام ہیں. جی بڑے مزے کے تھے.
ہمیں نہیں کھلائے.
نہیں آپ آئے نہیں تھے اس
وقت. اچھا چلیں ٹھیک ہے. واجد علی شیرازی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے لکھا تھا کہ آج بیگم صاحبہ کی فرمائش پر مچھلی انہوں نے بنائی ہے, تو انہوں نے بعد میں ابھی تھوڑی دیر پہلے لکھا ہے کہ لاہور کی مچھلی آپ بھول گئیں, اردو کے بھول گئیں, بادام میری بہن نے یاد کر لیے, سلامت رہیں آپ دونوں. بہت بہت شکریہ. اور ایک اور یہاں پر احمد رمی صاحب نے لکھا ہے کہ کشمیر کے بادام بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, اور آپ نے نوش کیے ہوں گے.
نوش نہیں کیا, احمد رمیز صاحب چاہیں تو ہم کھا سکتے ہیں.
اچھا ایک کلو یہاں پہ دو دو ایک ایک ادھر بھجوا دیجیے گا.
بہرحال
یہ تو مذاق ہے, اور انشاءاللہ کہ آپ لوگ ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں. ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ جب پولوشن ہو تو دودھ پئیں یا جوس پئیں یا فریش جوس پیا جائے, کس حد تک یہ مفید ہے؟
جی ڈاکٹر صاحب,
ویسے پولوشن کا میرے خیال میں اتنا تو نہیں ہے کہ دودھ پینے سے یا جوس پینے سے یہ اس کا جو اثر ہوگا وہ کم ہوگا, لیکن ویسے بھی فلوڈ زیادہ لینے چاہیے, کیونکہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں آج کل یہ جو کڈنی پرابلمز ہوتے ہیں اس کی جو وجوہات میں یہ شامل ہے کہ لوگ پانی نہیں پیتے یا جو فلوڈس ہوتے وہ نہیں پیتے, تو ان کا جو اثر ہوگا یہ کڈنیز وغیرہ پہ ہوتا ہے, تو ویسے ہی اچھی بات ہے کہ فلوڈز لینا چاہیے اور پانی زیادہ پینا چاہیے, لیکن اگر اس کو لنک کیا جائے تو میرے خیال میں اتنا گہرا تو نہیں ہے پولوشن کے ساتھ, لیکن بہتر ہے صحت کے لیے,
بہتر ہے صحت کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب پوچھنا یہاں پر یہ چاہوں گی کہ خود ذاتی طور پر کون سی احتیاطی تدابیر پر हम अमल कर सकते हैं, और खुद जो है मेजर बल्कि नहीं, जो बड़े शहर हैं उनमें ऐसे कौन से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं स्मॉग या फजाई आलूदगी के हवाले से?
दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जिस तरह हमने ज़िक्र किया कि ये मसला है जो दिन ब दिन ये शिद्दत इख्तियार कर रहा है, और ऐसे भी ममालिक है जो डेवलप कंट्रीज़ है, ख़ासकर जो यूनाइटेड किंगडम है या फ्रांस, ऐसे ममालिक है वो मुख्तलिफ किस्म के ऐसे एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं कि उस पर अमल करके वो कह रहे हैं कि हम आलूदगी भी काफ़ी हद तक वो हम काबू पा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं जो एक रिसर्च देख रहा था उसमें ये बात लिखी थी कि यूके में वो एक प्लान बना रहे हैं कि 2040 तक जितनी भी ये जो ऑटोमोबाइल्स है पेट्रोल और डीजल के उसको वो रिप्लेस कर सके, और ये जो हाइब्रिड कार आए हैं मार्केट में या जो इलेक्ट्रिक कार आए हैं उसको लाया जाए।
जी बिल्कुल।
और फ्रांस में ये एक तरीका उसने लोगों ने अपनाया है कि जो गाड़ियों के नंबर्स होते हैं ऑड नंबर जो होते हैं, एक जुब्त और ताक नंबर होते हैं, तो मुख्तलिफ दिन होते हैं
ऑड और इवन किया जाए,
हाँ, तो शहर के अंदर वो ऑड नंबर्स गाड़ी को बेच देते हैं, और काफ़ी हद तक जो ट्रैफिक होता है वो कंट्रोल होता है, गाड़ियाँ कम आती हैं शहर के अंदर तो आलूदगी कम होती है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाँ। जी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो एहतियाती तदाबीर डॉक्टर साहब ने बताई इस पर हमें अमल करते हुए, खुद अमल करते हुए मुंतजर ना रहें कि हुकूमत की तरफ से जो है हमें कहा जाए फिर हम ये काम किया करें, और अमल करते हुए स्मॉग को या आलूदगी को कम करेंगे। डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, खुदाफ़ी करते हैं, चलते हैं हसन की खिदमत में। जी हसन,
बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और बादाम का ऑफर मुख्तलिफ जगहों से आ रहा है हम लोगों के लिए, आपके हम शुक्रगुजार हैं।